ओम शांति। चलिए एक मिनट ट्रैफिक कंट्रोल, एक सेकेंड में सेंटर ऑफ द फोरहेड, आई द लाइट, मैं शक्ति, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई एवरी कर्म, मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर कर्म मेरी क्रिएशन है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई एवरी कर्म, आई एम द क्रिएटर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई कर्म। मेरे हर कर्म के परिणाम का क्रिएटर मैं हूं। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। अपना भाग्य मैं आत्मा खुद क्रिएट करती हूं। परमात्मा का ज्ञान शक्ति मेरे पास है। उस ज्ञान के आधार से मैं आत्मा अपना भाग्य बनाती हूँ। अब थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें अपनी जर्नी पर। क्या इस समय मेरे जीवन में, चाहे मेरी लाइफस्टाइल, चाहे मेरा बात करने का तरीका, चाहे मेरा काम करने का तरीका, बहुत डिटैच्ड होकर अपने आप को देखना, क्या कोई ऐसा कर्म है जो मुझे चेंज करना चाहिए? कोई ऐसा कर्म है जो मुझे चेंज करना चाहिए? मेरा कर्म मेरी डेस्टिनी बनाता है। बिल्कुल डिटैच्ड, जैसे हम दूसरों को देखते हैं कि वो क्या सही करते हैं, क्या गलत करते हैं, अपने आप को देखना है, क्या कोई कर्म ऐसा है जो चेंज करना चाहिए? किस किस ने चेकिंग किया, अपना चेकिंग किया, किसी को कुछ मिला कि कोई कर्म है जो मुझे चेंज करना चाहिए? किसको मिला? अच्छा, सबको मिला, वेरी गुड। अगर किसी का कुछ बहुत पर्सनल ना हो और बताना चाहें तो बताइए। हाँ जी, क्या कहा? फीडबैक देना। हाँ, ओके, वेरी गुड। और आज सुबह से नहीं लिया? क्या नहीं लिया? बहुत मुबारक। और कोई कर्म चेंज करना है? ईटिंग हैबिट चेंज। क्या करना है? अच्छा, कांदा लहसुन नहीं खाना है। ओके, ठीक है। हाँ जी, बार बार फोन चेक करने की हैबिट को चेंज करना है, वेरी गुड। और सुबह जल्दी उठना है। अच्छा, चिड़चिड़ापन नहीं करना है, वेरी गुड। देखो, एक होता है हैबिट, वो इजी होता है देखना कि ये नहीं खाना, ये खाना, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, फोन नहीं देखना, कौन, ये सब इजी टू चेक है। कर्म मीन्स थोड़ा डीपर चेकिंग, ये इजी है, ये हैबिट है। कर्म मीन्स मेरी तरफ से सोच में, बोल में, बिहेवियर में कोई ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है जो इधर नहीं है, ये चेकिंग। फिर से 10 सेकेंड्स लो, चेक करो। किसी के लिए भी मेरा सोचने का तरीका, किसी के साथ मेरा बात करने का तरीका, जैसे है ना, किसी के साथ हम इरिटेट होकर बोल देते हैं, किसी को हम डांट कर बोल देते हैं, भले गलती उनकी है लेकिन मेरा कर्म मुझे चेक करना है। तो कम से कम जो रेपिटेटिव कर्म होते हैं, सेम पीपल सेम माई बिहेवियर, तो हम क्या बोलते हैं, उनका बिहेवियर भी चेंज नहीं हो रहा। वो उनका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, वो उनका कर्म है। हम दूसरों को राय दे सकते हैं लेकिन हम दूसरों का कर्म नहीं बदल सकते। उनका कर्म कौन बदलेगा? वो बदलेंगे। लेकिन अगर मेरे सामने कोई गलत कर्म कर रहा है तो मेरा अटेंशन ये तो होना चाहिए ना कि मेरा कर्म भी गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका कर्म किसका भाग्य लिखेगा? ये हर बार, हर रोज अपने को याद दिलाना। बोलते हैं एक बार, उनका कर्म, बोलिए, उनका कर्म किसका भाग्य लिखेगा? अंडरलाइन डबल टाइम 10 टाइम्स। उनका कर्म उनका भाग्य लिखेगा, मेरा कर्म, अच्छे से बोलो, मेरा कर्म, पूरी लाइन बोलो, मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखेगा। क्योंकि कई बार हम कहते हैं उनकी वजह से मेरी किस्मत खराब हो गई, किसी की वजह से नहीं हो सकते, किसी की वजह से नहीं हो सकते, उसने मेरी किस्मत बना दी, कोई नहीं बना सकता। वो सामने आपके आ जाएगा और कुछ ऐसा कर जाएगा जिससे आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाए, लेकिन आपकी डेस्टिनी उसने नहीं चेंज किया है। आपकी डेस्टिनी किसकी वजह से चेंज हुई है? अपने ही कर्मों की वजह से, इधर दिस वे और दैट वे। भगवान कहते हैं, मैं भी आपका कर भाग्य नहीं लिखता। जब भले भगवान को क्या कहा जाता है, भाग्य विधाता, और बचपन से सुना था कि भाग्य कौन लिखता है, कहते पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है, किसी के घर भी कुछ होता है, कहता है भगवान की मर्जी है, कहते हैं ना हम ईश्वर की मर्जी। तो हर बार जब हम कहते हैं ईश्वर की मर्जी, गॉड्स विल, हम क्या कह रहे हैं कि सब कुछ किसकी मर्जी से हो रहा है? डू यू अग्री? कौन कौन मानता है कि सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है? हाथ उठा लो। सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, राइट? आप यहां किसकी मर्जी से आए हो? किसकी मर्जी से आए हो? कभी कभी हम कितनों को निमंत्रण देते हैं तो इमीडिएट आंसर जो सामने से होता है, कहते ईश्वर की मर्जी होगी तो आ जाएंगे, उसका बुलावा होगा तो पहुंच जाएंगे। फिर कभी कभी टिकट बुक करके किसी कारण से कैंसिल करते हैं, कहते अभी हमारे को उसने बुलाया नहीं है इसलिए हम नहीं आ रहे हैं। ये सब कहकर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डाल देते हैं? तो हमारी एक इनग्रेन्ड संस्कार जो पहले था वो ये था कि फॉर एनीथिंग हियर ब्लेम हियर 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 एंड यहर, कुछ नहीं मिला तो मतलब सबकी जिम्मेवारी है, किसको छोड़कर? मेरे को। एंड स्पिरिचुअलिटी ने उस एक इक्वेशन को ठीक कर दिया कि यहां जो चलता है वो किसकी जिम्मेवारी है? किसकी जिम्मेवारी है बोलो? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और 10 times सिर्फ टिल इट गोज इनग्रेन्ड इन टू माई कोडिंग विच इज ब्लेम गेम। बिकॉज इट्स वेरी इजी टू से ना, ये जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है, ये जो हो रहा है वो इसकी वजह से, ये जो हो रहा है इसकी वजह से, और ये जो हुआ ये उसकी वजह से, मेरा तो मैं तो बिल्कुल। इसीलिए डे बाय डे सोल पावर क्या होती गई? घटती गई, क्योंकि हमने उस पर वर्क नहीं किया। हमने कहा एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल सो एवरीबडी नीड्स टू चेंज। तो जब भी कुछ जीवन में बात आती है तो हम भगवान को कहते हैं ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अगर वो सामने खड़े होके बोल सकता हमें तो वो बोलता मैं क्यों करता आपके साथ ऐसा, आप पहले ये बताओ मुझे मैं क्यों करूं आपके साथ ऐसा। फिर हम उसको बोलते हैं अगले दिन, चल किया तो किया, अब ठीक करो जल्दी से। फिर तीसरे दिन तक ठीक नहीं होता तो हम कहते हैं अभी तक नहीं किया, चलो आप कर दो तो मैं आपके लिए यहां ये चढ़ा दूंगा। डीप भगवान है, पेरेंट है, प्यार से बात करो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, बताओ उसको, जैसे अपने पेरेंट को बताते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे जो सिखाते हो और आप मुझे जो शिक्षा देते हो, मैंने अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर लेना है। लेकिन ये नहीं होता कि पेरेंट के साथ बैठे और बोले ये प्रॉब्लम आपने दी है, अब ठीक भी कौन करेगा? आप करोगे, मैं सिर्फ वेट करूंगा देखने के लिए कि आप कब ठीक करते हो। और फिर अगले दिन तक ठीक नहीं हुआ तो फिर पेरेंट को बोलेंगे आप ठीक कर दो तो मैं आपके लिए आज खाना बनाऊं। आपको लगता है पेरेंट अगर ठीक कर सकता तो आपके खाने की वेट करेगा बनाने के लिए? नहीं। पर अपनी इनोसेंस में हमें यही नहीं पता कि हम भगवान को क्या बोलते हैं। उसको अपनी प्रॉब्लम सुनाओ, उसको ठीक करने के लिए उससे गाइडेंस मांगो कि मुझे आप बताओ कि क्या करना चाहिए मुझे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें यहां से जाने के बाद करना है। भगवान को ये मत बोलो मेरी प्रॉब्लम ठीक करो, क्योंकि वो नहीं ठीक करेगा। क्यों नहीं ठीक करेगा? क्यों नहीं ठीक करेगा? क्यों नहीं ठीक करेगा? क्योंकि वो हर बच्चे का पेरेंट है, एक हमारा पेरेंट नहीं है वो, सिर्फ वो हर बच्चे का पेरेंट है। अगर उसने एक का ठीक किया उसको सबके साथ सेम करना है। आज दुनिया में इतने गलत कर्म हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि लोग गलत करते जाएं और जब उसका परिणाम आए तो वो भगवान को बोले इसको ठीक कर दो और वो ठीक कर दे, तो वुडेंट लाइफ बिकम एक्सट्रीमली, व्हाट वुड इट बी, एक्सट्रीमली अनफेयर। सो जब दो बच्चे लड़ते हैं ना घर में भी तो पेरेंट कहते हैं खुद खुद ठीक करो अपना दोनों का, क्योंकि जैसे पेरेंट बीच में इंटरवीन करता है तो एक बच्चा बोलता है आप हमेशा उसकी साइड लेते हो, तो पेरेंट बोलता है मैंने बीच में आना ही नहीं, खुद लड़ रहा खुद ठीक करो इसको। लॉ ऑफ कर्मा से हम सब जुड़े हुए हैं, परमात्मा हमें ज्ञान और शिक्षा, शक्ति और प्यार देते हैं, लेकिन कर्म को कौन ठीक करेगा? कर्म को कौन ठीक करेगा? क्या आप अपने बच्चे का कर्म कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? उसको सिखा सकते हो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, पढ़ो। आप ये बार बार उसको बोल सकते हो, पढ़ो पढ़ो, लेकिन आप उसके लिए पढ़ नहीं सकते हो। आप उसको बोल सकते हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं आपके साथ बैठा हूं, लेकिन अगले दिन एग्जाम आप उसका जाकर दे नहीं सकते हो। वो एग्जाम किसने देना है? उसने ही देना है। तो पेरेंट का रोल क्या है, बच्चे का रोल क्या है, इसी तरह परमात्मा का रोल क्या है, हम बच्चों का रोल क्या है। परमात्मा भी हमें रोज पढ़ाते हैं, और जो हमें ज्ञान मिलता है वो हमें क्या ज्ञान मिल रहा है? सही कर्म करने का ज्ञान। सोचना कैसे, बोलना कैसे, करना कैसे, फील क्या करना, क्या नहीं करना, दिस इज ज्ञान। इसीलिए हम कहते हैं रोज जाने के बाद आप रोज सेंटर जाना। अगर आप रोज एक घंटे के लिए सेंटर जाते हैं ना, रोज आपकी प्रोग्रामिंग हो जाती है सही कर्म की। और जब सही कर्म की प्रोग्रामिंग हो जाती है ना, भाग्य अपने आप सही बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस समय जब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, सही और गलत की डेफिनेशन क्या हुई हुई है, बदली हुई है कि नहीं बदली हुई? जो सही है उसको ही लोग कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं करना। कोई ट्रस्ट करता है उसको बोलते हैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब क्या बोल रहे हो, डाउट करो। फिर कोई फॉरगिव करना चाहता है उसको बोलते हैं फॉरगिव मत करना, फिर वो फिर तुम्हारे साथ गलत करेंगे। ऐसा ज्ञान मिलता है हमें। ये ज्ञान हमें गलत कर्मों की तरफ लेकर जाता है। तो परमात्मा का शुक्रिया ये है कि परमात्मा हमें राइट सोचना, राइट बोलना और राइट कर्म सिखाते हैं, लेकिन हमारा कर्म करते नहीं है। कर्म कौन कर रहा है? मैं। तो भाग्य मेरा कौन लिख रहा है? रखो उंगली उन पर। भाग्य मेरा कौन लिख रहा है? भाग्य ठीक कौन करेगा? तो अब पता है किसके पास जाना होता है? अपना भाग्य ठीक करने के लिए किसके पास जाना होता है? हम कितने लोगों के पास जाते हैं और फिर उनको कहते हैं मेरा ये ठीक कर दो। अटेंशन है, लोग हमें राय दे सकते हैं लेकिन हमारा भाग्य कोई और ठीक नहीं कर सकेगा। तो दो ऑप्शंस हैं, परमात्मा हमारा भाग्य बनाते हैं या भगवान हमारा भाग्य बनाते हैं या हम खुद अपना भाग्य लिखते हैं। अगर भगवान हमारा भाग्य बनाते तो भाग्य कैसा होता? विजुअलाइज, गॉड इज राइटिंग माय डेस्टिनी एंड देन गॉड इज राइटिंग एवरीवन्स डेस्टिनी। तो अगर परमात्मा सबका भाग्य लिखे तो भाग्य कैसा होगा? परफेक्ट। सिर्फ पिछले 2-3 सालों से देख लो कितनी इम्परफेक्ट चीजें हो रही हैं। भगवान कोविड भेजेगा सृष्टि पर, भगवान आंधी तूफान बाढ़ लाएगा देश में, भगवान दूसरे देश में युद्ध कराएगा, ये सब परमात्मा कर रहा है। और बाकी जो चीजें रोज हो रही हैं वो तो अलग। सो वी नीड टू पॉज, These are our creation and we need to rectify. अगर परमात्मा सबका भाग्य लिखते तो दो क्राइटेरिया होता, एक तो परफेक्ट लिखते और दूसरा सबका एक जैसा लिखते। एक का ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। पेरेंट ऐसे नहीं करता। आप कभी ऐसे करेंगे? आपके एक बच्चे के लिए इतना, दूसरे के लिए इतना कम, कौन पेरेंट ऐसे करता है? तो परमात्मा कैसे करेंगे? हो नहीं सकता। तो दो लॉज हैं, दो बिलीफ सिस्टम है, वो लिखता है। दूसरा बिलीफ सिस्टम है जैसा कर्म मेरा भाग्य। तो कौन सा बिलीफ सिस्टम राइट है? क्योंकि कर्म हम बहुत अच्छे करते हैं लेकिन कभी कभी कुछ, तो डेस्टिनी में भी बहुत अच्छा आता है, कभी कभी कुछ आ जाता है। कर्म हमारे एक जैसे नहीं है तो फिर भाग्य भी हमारा एक जैसा नहीं। आप सिंपल एक देखो, आप सब इस रिट्रीट के लिए आए हो लेकिन इस रिट्रीट में भी 3 दिन हर एक अलग अलग तरह से इसको लेगा। फिर यहां से वापस जाने के बाद भी हर एक अलग अलग तरह से इसको लेगा। ज्ञान आप सबको सेम मिल रहा है, लेकिन उसको लेना और उसको इंप्लीमेंट करना, ये हर एक का कर्म अलग अलग होगा, और इसीलिए डेस्टिनी भी हर एक की। तो आज से एक चीज पक्की, एवरीथिंग इज एज पर हुज विल, एवरीथिंग इज एज पर हुज विल। तो अगली बार आपको कोई कहेगा ना दिस वॉज गॉड्स विल, बोलना नो दिस वॉज नॉट गॉड्स विल, दिस वॉज हुज विल, दिस वॉज माई विल। ठीक लगता है ऐसा बोलना? ऐसा लगता है मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो गया? होती है ना ऐसे थॉट आती है ना, जब भी कुछ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं होता है तो हम कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया किसी के साथ ऐसा, मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की है जो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, और तब हमें लगता है कि लॉ ऑफ कर्म फेयर नहीं है। और कुछ लोग हमें दिखाई देते हैं जो कुछ कुछ गलत गलत कर रहे हैं और उनकी डेस्टिनी बहुत परफेक्ट दिखाई देती है हमारे को, उनके घर में तो सब कुछ ही परफेक्ट चल रहा है, तो हम कहते हैं ये कौन सा लॉ है, ये कैसे काम कर रहा है, वो गलत कर रहे हैं, वो बड़े आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया और मेरी लाइफ में बार बार क्या आता जा रहा है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आता जा रहा है। इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा को अच्छी तरह से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जीवन में ये सब वेस्ट क्वेश्चंस को क्या हो जाए, फुल स्टॉप, एंड वी गो टू द रूट पर पकड़ के। कर्म कौन कर रहा है? कर्म कौन कर रहा है? मैं मतलब कौन? अब मैं मतलब कौन? मैं आत्मा, वो याद रखना है। कर्म कौन कर रहा है? आई द सोल, नॉट आई द बॉडी, नॉट आई द रोल, नॉट आई द रिलेशनशिप, आई द सोल। तो आत्मा सारा दिन, अब ये कॉन्स्टेंट चेकिंग है, आत्मा सारा दिन दो चीजें यहां रिकॉर्ड हो रही हैं, कर्म संस्कार, कर्म संस्कार। तो कल जो हमने देखा मन बुद्धि संस्कार, मन थॉट क्रिएट करेगा। मैं ना फोन नीचे रख सकते हो, रिकॉर्ड हो रहा है, व्हाई टायर योरसेल्फ सो मच, रखो आराम से। मन थॉट क्रिएट करेगा, बुद्धि डिसीजन लेगी, बिहेवियर में आएगा, कर्म बनेगा। बार बार कोई कर्म करेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा? संस्कार बनेगा। तो यहां क्या रिकॉर्ड हो रहा है? कर्म संस्कार, कर्म संस्कार रिकॉर्ड हो रहे हैं। अभी तक कितने रिकॉर्ड हो गए होंगे इस लाइफ टाइम के अंदर? एक दिन के अंदर इतने कर्म हो जाते हैं, ये सब रिकॉर्डिंग है, इट्स लाइक अ सीडी। एक क्षण आया, मैं आत्मा ने शरीर छोड़ा, शरीर से क्या निकला, क्या निकला? आत्मा निकली। इट्स लाइक प्लेयर में से सीडी निकली, और प्लेयर में से सीडी निकली और फिर सीडी को कहां जाया? दूसरे प्लेयर में डाला। कौन से गाने बजेंगे, कौन से गाने बजेंगे? सिर्फ प्लेयर चेंज हुआ है, सिर्फ प्लेयर चेंज हुआ है, सिर्फ शरीर चेंज हुआ है। ओनली द बॉडी हैज चेंज्ड, एंड बॉडी हैज चेंज्ड, फैमिली हैज चेंज्ड, सिचुएशन हैज चेंज्ड, योर एवरीथिंग हैज चेंज्ड, बट आत्मा जो उस शरीर में थी वही आज इस शरीर में है। अब एक सेकेंड विजुअलाइज करो, मैं आत्मा इस शरीर में हूं, क्या क्या रिकॉर्डेड है, और आज मैं इस शरीर को छोड़ती हूं, एंड आई एंटर द वोम्ब ऑफ द मदर, माँ के गर्भ में प्रवेश करती है आत्मा, और कुछ महीनों के बाद बेबी बॉर्न, बच्चा पैदा होता है, और दो तीन दिन के अंदर ही पंडित जी उसकी जन्म पत्री बना देते हैं। ये होगा, ये वाला ईयर बहुत अच्छा होगा, ये वाले ईयर में बहुत तरक्की करेगा, बट फिर ये वाले ईयर में एक मुश्किल आएगी, फिर ये वाला ईयर तो सबसे डिफिकल्ट ईयर है इसकी लाइफ का, फिर इस ईयर तक थोड़ा ठीक हो जाएगा। पहले ही लिख दिया सब कुछ, अभी तो उस बच्चे ने कोई कर्म ही नहीं किया, कोई कर्म नहीं किया, ये कैसे लिख दिया सारा कुछ? अभी तो न्यू बॉर्न बेबी, अभी तो नाम भी नहीं मिला उसको, और उसकी पूरी डेस्टिनी लिखी गई। और इसीलिए दुनिया कहती है एवरीथिंग इज प्री डेस्टिंड। बट प्री डेस्टिंड बाय हु? बाय हु? तो हम देखते हैं बेबी बॉर्न, बेबी इज ओनली द बॉडी। तो अगली बार बच्चे को देखोगे ना तो अलग नजरिए से देखना, सिर्फ शरीर नया है। हम कहते छोटा है, कौन छोटा है, कौन छोटा है? मैं आत्मा हूं अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, मैं आत्मा हूं, वे ऑफ लिविंग है नाउ फ्रॉम मंडे। कौन छोटा है? सिर्फ शरीर। तो ऐसे नहीं बोलना छोटा है तो डांट सकते हैं, किसी का रोल छोटा है तो उसको डांट सकते हैं, किसी की बॉडी की एज कम है तो उसको डांट सकते हैं, बच्चा छोटा है तो उस पर हाथ भी उठा सकते हैं, फिर जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो कहते अब नहीं हाथ उठा सकते हैं, अब बड़ा हो गया है। शरीर छोटा है, शरीर बड़ा हो जाता है, आत्मा वो ही है। आत्मा ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, ना मोटी होती है ना पतली होती है, कुछ नहीं, सेम एनर्जी इज इन दैट बॉडी। आत्मा के सिर्फ संस्कार और कर्म रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। तो वो जन्मपत्री कैसे बनी? क्योंकि वो बच्चे की जन्मपत्री नहीं, उस बच्चे के शरीर में आई हुई आत्मा की जन्मपत्री है। और वो किस आधार से बनी? क्योंकि कर्म के आधार से भाग्य बनेगा, तो भाग्य किस आधार से लिखा गया? जो कर्म, जो कर्म, बोलो आंसर आपने देना, जो कर्म मैं आत्मा लेकर उस शरीर में गई हूं। तो जब कोई शरीर छोड़ता है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम कभी नहीं कहते सो एंड सो डाइड, दैट वोकैबुलरी इज नॉट देयर, वी से सो एंड सो लेफ्ट देयर बॉडी ऑलवेज। उन्होंने अपने पुराने शरीर को त्याग दिया है, वो मर गया है कभी नहीं बोला जाता, क्योंकि हमें पता है कि वो मरता नहीं है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, इटर्नल है। आई कैन नॉट डाई, द बॉडी इज फिनिश्ड, बॉडी इज फिनिश्ड। आप देखो, अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर सर्जरी के लेके जा रहा हो तो वो सिस्टर को क्या बोलता है? सिस्टर, मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ। सपोज थिंग्स डोंट गो राइट, तो डॉक्टर क्या बोलता है? सिस्टर, बॉडी को बाहर लेकर जाओ। फैमिली भी आती है हॉस्पिटल उस दिन और डॉक्टर को कहती है, डॉक्टर साहब हम बॉडी को घर कब लेकर जा सकते हैं? 2 घंटे पहले तक बोल रहे थे मम्मी ठीक हो जाए, पापा ठीक हो जाए, और अभी बोलते डॉक्टर साहब हम बॉडी को घर कब लेकर जा सकते हैं? सडनली अब वो सिर्फ बॉडी है। क्यों बॉडी है अब वो? क्योंकि जो वो रिश्ता जिसके साथ था, जिसका वो नाम था, वो तो, और इसीलिए उसको अर्थी कहा जाता है। अर्थी मतलब अरथी, जिसका रथी, रथी मतलब रथ चलाने वाला चला गया है, वो अरथी है, सिर्फ रथ है, रथी चला गया है। तो रथी कौन? रथी कौन? चैरिटियर, उस चैरियट को चलाने वाला। और वो रथी कहाँ गया? अजर, अमर, अविनाशी है, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में एंटर हो गया। तो एंटर हुआ तो अपने साथ क्या लेकर गया? तो दुनिया कहती है खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे। खाली हाथ क्यों कहते हैं? बिकॉज एवरीथिंग दैट इज विजिबल वी कांट टेक विद अस। तो हम पीछे क्या क्या छोड़ के जाएंगे, ये भी रोज याद दिला देना अपने आप को। हम पीछे क्या क्या छोड़ के जाएंगे? 1, ये आपने बताना है, हम पीछे क्या क्या छोड़ के जाएंगे बोलिए। हाँ जी, प्रॉपर्टी पीछे छोड़ के जाएंगे। वेरी गुड, प्रॉपर्टी पीछे छोड़ के जाएंगे। और क्या छोड़ के जाएंगे पीछे? हाँ जी, फैमिली पीछे छोड़ के जाएंगे, प्रॉपर्टी पीछे छोड़ के जाएंगे, फैमिली पीछे छोड़ के जाएंगे, और क्या छोड़ के जाएंगे? बॉडी छोड़ के जाएंगे। तो ये शरीर छोड़ के जाएंगे, लोग छोड़ के जाएंगे, संपत्ति प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है छोड़ के जाएंगे, जिन बातों में आज हम उलझे हुए वो बातें भी छोड़ के जाएंगे। लेकिन उन बातों के बारे में हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो हम अपने साथ लेकर जाएंगे। उन लोगों को पीछे छोड़ के जाएंगे, लेकिन उन लोगों के साथ हम रिश्ता कैसे निभा रहे थे वो कर्म अपने साथ लेकर जाएंगे। बॉडी को पीछे छोड़कर जाएंगे, लेकिन बॉडी को कैसे ट्रीट किया था वो कर्म अपने साथ लेकर जाएंगे। तो जो इन आंखों से दिखाई देता है पीछे रह जाएगा, जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता है वो साथ में जाएगा। तो सारा दिन अटेंशन किस पे होना चाहिए, किस पे होना चाहिए? हमारा सारा अटेंशन किस पे है? जो पीछे रहने वाला है, जो कि इम्पोर्टेंट है। जो पीछे रहने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो साथ जाने वाला है वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर कभी ऑफिस में कोई खींचतान होती है, कोई दूसरा आगे निकल रहा है, मैं पीछे रह रहा हूँ, कोई गलत तरीका अपना रहा है, आगे जाने के लिए, ज्यादा कमाने के लिए, किसी को गलत प्रूफ करने के लिए कोई ऐसा कर्म नहीं करना। वो पोजीशन साथ नहीं जाएगी, वो सिर्फ एक दिन की मुबारक है। वो पोजीशन साथ नहीं जाएगी, वो पैसा भी साथ नहीं जाएगा, लेकिन जो गड़बड़ की होगी ना, इवन द गड़बड़ मीन्स किसी के बारे में कुछ फैला देना, किसी के बारे में कुछ बोल देना, किसी के काम का क्रेडिट ले लेना, जो गड़बड़ की होगी ना वो कर्म साथ में जाएगा। दिस शुड ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। और वो सिर्फ साथ जाने के लिए नहीं है, इवन इन दिस लाइफ टाइम वो जो मेरा कर्म है ना वो ही मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करता है। हमें लगता है पैसा ज्यादा आ जाएगा, नाम ज्यादा आ जाएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। नो, मैंने कैसे वो पैसा और नाम कमाया दैट विल डिसाइड वेदर आई विल बी हैप्पी। पैसा और नाम आएगा तो चीजें आएंगी, लेकिन कमाया किस तरीके, उस तरीके से सुकून आएगा, क्योंकि वो यहां रिकॉर्डेड है। तो कभी भी ये ज्यादा कमाने के लिए यहां नहीं घटाना, इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करना, ये इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करना, क्योंकि यहां जब कुछ घटता है और फिर उसका जब कॉन्सिक्वेंस आता है तो ये वाले आराम भी अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, यहां वाले आराम भी अच्छे नहीं लग रहे होते। लेकिन अगर यहां कर्म ठीक किया है और यहां कम है तो भी परिवार भरपूर है, खुश है, संतुष्ट है, फीलिंग भी नहीं आती कि हमारे पास कुछ कम है, बिकॉज कर्म सही करे हैं। तो आजकल जब एक दूसरे को मिलते हैं तो पूछते हैं, हाउ मच आर यू मेकिंग, कितना कमा रहे हो, कहां तक पहुंचे हो। प्यार से उनको बोलना, हाउ मच आई एम मेकिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ आई एम मेकिंग डिसाइड्स हाउ हैप्पी आई एम एंड आई एम फोकसिंग ऑन दैट। अपने आप को इस दुनिया की रेस से क्विट करो, क्योंकि दुनिया की रेस का तो डायरेक्शन ही ठीक नहीं है, तो उस रेस में जाने का, हिस्सा होने का क्वेश्चन क्या है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है हमने पीछे हो जाना है कहीं भी। जो कर्म सही करते हैं उनका भाग्य, उनका भाग्य, जो सही कर्म करेगा उसका भाग्य। लेकिन सिर्फ ये है कि मेरे को भाग्य देखना आना चाहिए। हमें क्या होता है, हम किसी को देखते हैं कि वो गलत कर रहा है और हम देखते हैं आज उसने नई मर्सिडीज भी खरीद ली, कमाल है भाई, गलत करता है फिर भी उसको मर्सिडीज मिल गई, तो हमें लगता है वो मेरे से ज्यादा भाग्यशाली है। आपको उसकी गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन आपको उसके मन की स्थिति नहीं दिखाई देगी कि उसके पास कितना सुकून है। उसने गलत तरीके से पैसे कमाया तो पैसे वाली चीज तो आई जाएगी उसके पास, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर तरीके में कुछ भी गड़बड़ की थी, बड़ी बड़ी गड़बड़ की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी भी कुछ, तो उसका रिजल्ट उसके यहां सुकून नहीं आ सकता। तो इसलिए कभी भी किसी भी रेस का पहली बात हिस्सा ही नहीं बनना। लिविंग इन अ रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रेस ओनली। सारा दिन भाग रहे हैं, कैसे कैसे हैप्पी रह सकते हैं? सपोज हम यहाँ आबू में हैं, हम जयपुर चलते हैं, अभी यहाँ से गए चलो उदयपुर चलते हैं, बहुत अच्छी एक्सप्रेस वे आई है, खाली सड़क है, यहाँ से निकलते हैं 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। तब विजुअलाइज, अपनी अपनी गाड़ी में बैठो और बोलो हम उदयपुर जा रहे हैं, ठीक है, खाना भी पैक कर लो और फैमिली भी बैठ जाए, वेरी ब्यूटिफुल ड्राइव, बहुत अच्छी ड्राइव है ये। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो वो बहुत ब्यूटीफुल ड्राइव है, लेकिन जब दूसरी गाड़ी को देखा और खिड़की से एक दूसरे को देखते हुए कहा चल रेस करते, रेस थी नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में जा रहे थे, हम अपनी फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में जा रहे थे, वो भी पहुंच जाएंगे हम भी पहुंच जाएंगे, 5 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं हो सकता ज्यादा, पर जर्नी बहुत ब्यूटीफुल थी, हंसते खेलते गाने सुनते गाने गाते बातें करते खाते पीते हम पहुंच जाते उस जर्नी पर बहुत प्यार से। हमने सिर्फ एक गड़बड़ की, हमने दूसरे को देखा और हमने कहा चल रेस करते हैं, अब ड्राइव कैसी हो जाएगी? हाउ द रेस्ट ऑफ द ड्राइव, अब उसको विजुअलाइज करो बाकी जर्नी कैसे चलेगी। यहां से परिवार से ध्यान हट जाएगा और सारा ध्यान किसकी तरफ चला जाएगा? उसके आगे जाना है। कोई आपको कहेगा खाना खा लो थोड़ा सा, तुमको खाने की पड़ी हुई है, हटाओ इसको सबको, मुझे क्या करना है, मुझे उनसे आगे जाना है। जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, मुझे उनसे आगे जाना है। उस वजह से ना ठीक से खाते हैं, ना ठीक से सोते हैं, ना अपना ध्यान रखते हैं। मेडिटेशन कहते हैं टाइम नहीं है, क्यों टाइम नहीं है? अगर जर्नी पर होते तो बहुत टाइम होता, रेस में है इसलिए टाइम नहीं है। जर्नी पर होते तो अपना ध्यान रख के गाड़ी चलाते, रेस में है तो ना अपना ध्यान रखते ना अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हैं, नहीं रख रहे ना अपनी गाड़ी का ध्यान। इसीलिए अब ऐसे करते करते हम चला रहे हैं, उदयपुर तो हमने फिर भी पहुंच जाना है, लेकिन जर्नी कैसी होगी? अब ऐसे करते करते रास्ते में मेरी गाड़ी, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, वो गाड़ी ही थोड़ी डिफरेंट है, उनकी मर्सिडीज है मेरी मारुति है, और थोड़ा तो क्षमता हर एक की अलग अलग होती है, हर एक का EQ सेम हो सकता है वेरी हाई, लेकिन IQ अलग अलग है, टैलेंट स्किल अलग अलग है। ये बात अलग है कि जब आप अपनी EQ को बढ़ाएंगे तो आपका जो IQ होगा, टैलेंट होगा, स्किल होगा, वो आप अपने कैपेसिटी से ज्यादा कर लेंगे, दूसरों से ज्यादा नहीं, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, क्योंकि आपने अपनी माइंड पावर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, जीवन में किसके रेफरेंस में काम कर रहे हैं, अपने से पहले से बेटर, अपने से पहले से बेटर, पिछले साल जो किया उससे बेटर। तो गाड़ी उनकी अलग है, मेरी भी गाड़ी अलग है, लेकिन मुझे फर्स्ट तो आना है। थोड़ी आगे जाकर एक रेड सिग्नल आया, वो रुक गए, तो हमने क्या सोचा, फर्स्ट तो आना ही है, यही मौका है, क्या करना है रेड सिग्नल पे रुक के, और हम निकल गए आगे। दैट इज दी ओनली रीजन हम जीवन के नियम और रेड सिग्नल तोड़ रहे हैं, सड़क के रेड सिग्नल नहीं, जीवन के रेड सिग्नल तोड़ रहे हैं, नियम मर्यादाएं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस। और अब तो उन अनएथिकल को अनएथिकल भी नहीं बोलते, नॉर्मल हो गया, कहते बिजनेस है थोड़ा बहुत तो चलता है। जब बोलोगे थोड़ा बहुत तो चलता है तो साथ में ये भी लिख लेना, थोड़ा बहुत तो डेस्टिनी में आएगा ही, फिर आप अपने थोड़े बहुत की डेफिनेशन खुद डिसाइड करना। लेकिन ये नहीं है थोड़ा बहुत तो चलता है और डेस्टिनी में जब थोड़ा बहुत आता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों क्यों, मैंने तो कोई कुछ नहीं किया। अपने थोड़े बहुत को हटा दो और अपने हाईएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज इन प्रिंसिपल्स पे अपने को स्ट्रेच करो, इवन इफ यू आर दी ओनली वन डूइंग इट। खींचते जाओ अपने आप को ऊपर, आपकी शक्ति इतनी ऊपर बढ़ जाएगी, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, भाई कौन सी दुनिया में रहता है, ऐसे कौन काम करता है, मैं आई इतना सिंसियर नहीं होना चाहिए, शुक्रिया ये मेरा संस्कार है। लोग आकर बोलते इतना ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, शुक्रिया मेरा संस्कार है। स्ट्रेच और ऊपर खींचो, ऑपोजिट नहीं। कोई भी टाइम दे नहीं आता मुझे जल्दी जाके क्या करना है। अपनी वैल्यूज को छोड़ना नहीं कभी, जस्ट बिकॉज दूसरे में नहीं दिखाई दे रही है। ये घोर कलयुग का समय चल रहा है, इस समय आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आपकी संस्कार, मर्यादाएं, प्रिंसिपल्स और वैल्यूज हैं। उसको जिसने पकड़ के रखा ना, वो ही इस कलयुग को क्रॉस कर सकेगा ठीक से, क्योंकि वो ही पूंजी है। बाकी सब तो अनसर्टेन है, आज है कल नहीं, आज है कल ऊपर नीचे है। इसको कभी नहीं घटाना, इसको तो डे बाय डे क्या करना है, इसको डे बाय डे क्या करना है, बढ़ाना है। कलयुग इसलिए कलयुग बन रहा है क्योंकि लोग इसको डे बाय डे छोड़ रहे हैं। दिस डजंट वर्क, दिस डजंट वर्क, दिस डजंट वर्क। तो हमने रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया, थोड़ा सा आगे तो हम निकल गए, फिर भी वो कैच अप तो कर ही लेंगे। अब थोड़ी देर आगे जाके क्या हुआ, उनकी गाड़ी खराब हो गई और हम पीछे से आ रहे थे, तो हमने देखा ये तो साइड पे हाईवे पे साइड पे खड़े हुए, इनकी तो गाड़ी खराब है और आसपास कोई है भी नहीं ठीक करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? जब वो टीवी पे नहीं देखते गाड़ी की रेसेस होती हैं, जो अगर कोई गाड़ी एकदम ठक करके दूसरी साइड पे गलती से लग जाती है, उल्टी फुल्टी हो जाती है, बाकी लोग रुकते हैं क्या हेल्प करने के लिए? नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते? रेस में हम नहीं रुकेंगे लोगों को हेल्प करने के लिए, अगर हमें लगेगा हम रेस में हैं। हेल्प करने के लिए मतलब करियर में हम आगे जाने में दूसरे की मदद नहीं करेंगे, बिजनेस में आगे जाने के लिए हम दूसरे की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कहेंगे हम अपने कॉम्पिटिटर को क्यों आगे बढ़ाएं। तो अपना हेल्प करने का संस्कार, अपना कोऑपरेट करने का संस्कार, अपना दूसरों को आगे बढ़ाने का संस्कार, उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने कहा लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन। और छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा दिया, याद रखना लाइफ इज अ कॉम्पिटिशन, कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअली देखो तो कोई कंपटीशन है नहीं। दो आत्माएं एक ही पोजीशन पर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन पर, एक ही जैसी मेहनत कर रही हैं, तो दोनों का रिजल्ट भी एक ही जैसा होना चाहिए ना, सब कुछ एक। अच्छा दो छोड़ो, ट्विंस, चलो इसको विजुअलाइज करो। ट्विंस दिखने में एक जैसे, बॉर्न इन द सेम फैमिली, सेम परवरिश, सेम स्कूल, सेम पढ़ाई, सेम कॉलेज, सेम प्रोफेशन, सेम ऑर्गेनाइजेशन या सेम बिजनेस, स्टार्टेड ऑन द सेम डे, क्या उनका बिजनेस एक जैसा चलेगा? सब कुछ तो सेम था। रेस का स्टार्टिंग पैरामीटर, सब कुछ तो सेम था, एक जैसा चलेगा? क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? सपोज हम ये भी विजुअलाइज करें ना कि दोनों जने आइडेंटिकल कर्म कर रहे हैं, आइडेंटिकली ऑनेस्ट, आइडेंटिकली हार्डवर्किंग, आइडेंटिकल दोनों सेम कर्म कर रहे हैं, तो भी उनका भाग्य सेम नहीं होगा, क्योंकि एक फैक्टर अलग है, दोनों के पास्ट कर्म जो वो दो आत्माएं लेकर आई है। एंड इसीलिए वी कैन नॉट बी इन अ रेस विद एनीबडी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है सामने वाला क्या पास्ट कर्म लेकर आ रहा है। तो हम कितना भी आगे जाने की कोशिश करें, उनकी तो डेस्टिनी की रूट ही अलग है। इसीलिए हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं ना अपने आप को, तो हम कहते हैं उनको कैसे सक्सेस जल्दी मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने ज्यादा मेहनत की है। हम अभी को देख रहे हैं सिर्फ, इसीलिए अपनी जर्नी पर फोकस करने के लिए और अपनी वाइब्रेशन को दूसरों को देखकर डिप्लीट न करने के लिए हमेशा याद रखना पड़ेगा, माय कर्म my past karma and my present karma, that is my route to success. I am not in the race because मुझे पता ही नहीं है उनका past karma इधर था या इधर था, क्या था, किसी को पता नहीं है. तो competition तो fair है ही नहीं, क्योंकि starting point ही हर soul का different है. और जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो हमारा प्रेजेंट भी हर एक का डिफरेंट है, हर एक का घर का माहौल डिफरेंट है, हर एक की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, हर एक के संस्कार डिफरेंट है, डिफरेंट है. कोई बहुत रूथलेस होकर अपने परिवार का ध्यान बिल्कुल न रखकर सिर्फ काम 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 करता है, रात को 2 बजे तक काम करता रहता है, हो जाएगी उसकी प्रमोशन जल्दी, तो उसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि उसने सिर्फ काम किया तो उसकी प्रमोशन जल्दी हो जाएगी. अगर आप उसके साथ रेस में चले गए तो आपको क्या करना पड़ेगा. अगर कोई ओवर स्पीड कर रहा है और आपको उसके आगे जाना है तो फिर आपको भी अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा. एंड इसका मतलब हम भी फिर अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे. सो ड्राइव एट योर पेस, अपने जीवन की स्पीड खुद डिसाइड करना. इस समय बहुत सारे लोग ओवर स्पीड कर रहे हैं, उस ओवर स्पीड को नॉर्मल नहीं बोलना, क्योंकि उसको नॉर्मल बोलते हो तो बहुत लोगों को अपना नॉर्मल बदलना पड़ रहा है. ड्राइव करो, इस जर्नी को एंजॉय करो, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो. जब तक आप ओवर स्पीड कर रहे होगे आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आज आप उनकी तरफ देखोगे कल वो आपकी तरफ नहीं देखेंगे. दिस इज ऑल अ कर्म रिबाउंड, ये सब कर्म रिबाउंड है. आज हम कहते हैं उनको मेरे पास टाइम नहीं है, कल वो कहेंगे सॉरी डैड मेरे पास टाइम नहीं है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. आज आप उनके साथ टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, इट इज लॉ ऑफ कर्मा, वो आपके साथ टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे. सिर्फ भाग रहे हैं तो अपनी जर्नी की स्पीड की नॉर्मल डेफिनेशन कौन डिसाइड करेगा. ओनली एंड ओनली वन पर्सन. उसकी प्रायोरिटीज कौन डिसाइड करेगा. ये हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि अगर कोई थोड़ा सा स्लो डाउन करता है, स्लो डाउन इन रेफरेंस टू ओवर स्पीडिंग, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर कोई स्लो डाउन करता है तो सामने वाला कहता है क्या देयर इज नो पैशन इन यू, इतना ठंडा ठंडा ऐसे कौन काम करता है, ऐसे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे. प्लीज प्यार से मुस्कुराना और उनको दुआएं दे देना, उनकी बात के प्रभाव में नहीं आना. दे आर द सेम पीपल ऑन द रोड जो 120 की स्पीड पे चल रहे हैं और 80 की स्पीड वाले को देख के बोलते हैं मजाक बोलते क्या भैया गाड़ी चलानी नहीं आती, कौन चलाता है इतने धीरे. और वो जो प्यार से सेफली 80 पर चला रहा था वो उस मजाक को सहन नहीं कर पाता है और सिर्फ उस वजह से वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है, ना खुश रहता है और फिर ना आदत होती है 120 पे चलाने की, तो पता नहीं कहाँ ठोक देता है. ध्यान से, अटेंशन से, हर एक का नॉर्मल कौन डिसाइड करेगा. तो दुनिया में कोई नॉर्मल का डेफिनेशन नहीं है. हर एक ने नॉर्मल किसने डिसाइड करना है, मैंने. मुझे अपनी फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है, आई विल डिसाइड. दूसरे ने नहीं करना, उनकी चॉइस. मुझे रात को ठीक से सोना है, आई विल डिसाइड. दूसरे को नहीं सोना, उनकी चॉइस. हम ये भी नहीं बोल रहे वो गलत है, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं हमने अपने सही पर चलना है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चाहे वो इस जीवन की क्वालिटी है चाहे वो अगली, वो यहां डिसाइड होगी यहां नहीं डिसाइड होगी. करेंगे अपनी स्पीड पर, चलेंगे अपनी स्पीड पर, कभी मत पीयर प्रेशर में आना. अगर बहुत सारे लोग ओवर स्पीड कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइट स्पीड पर चल रहे हैं. आज आपके पास 12 बजे डॉक्टर मोहित गुप्ता आएंगे, वेरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम दिल्ली, गिफ्ट फॉर यू. उनका सेशन शेड्यूल में नहीं था लेकिन वो आ रहे हैं. वो आपको बताएंगे कि क्यों इतनी यंग एज में आज कार्डियक इश्यूज हो रहे हैं. द रीजन इज वेरी वेरी फास्ट लाइफ स्टाइल, स्थिरता ही नहीं है अपने अंदर. तो अपने कर्म पर अटेंशन. पक्का है सबका? तो हमारे पास मेडिटेशन के लिए रोज टाइम है. दूसरे लोग आपको देखे थे सुबह सुबह काम में खाली होकर बैठ गए सुबह सुबह। जीवन की फाउंडेशन को सेट करेंगे, फिर उसके ऊपर अपनी बॉडी की हेल्थ को देखेंगे, फिर अपनी फैमिली की हैप्पीनेस को देखकर जब ऑफिस जाते हैं ना तो हमारी काम की एफिशिएंसी इधर चली जाती है। इट इज ऑलवेज सेल्फ, बॉडी, फैमिली, वर्क, क्योंकि ये तीन का ध्यान रखकर जब काम पर जाएंगे ना तो ज्यादा घंटे काम नहीं करना पड़ता, कम घंटे में भी बहुत अच्छा काम हो जाता है क्योंकि प्रायोरिटी राइट डिस्ट्रिक्ट में गई है। तो मेरा कर्म मेरा भाग्य करता है, तो आई एम इन नो कॉम्पिटिशन विद एनीबडी, क्विट द रेस। कोई आपके साथ टग ऑफ वॉर खेल रहा हो, खींच रहा हो, रस्सी को छोड़ दो, बोलो आप खेलते रहो, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस गेम। किसी के साथ इंटेंगल नहीं होना है आजकल, जिसके साथ भी इंटेंगल होंगे उसकी वाइब्रेशन हमें नीचे खींच देगी। उसको ब्लेसिंग दो और अपनी जर्नी पर आगे चलो, खींचतान में बिल्कुल नहीं जाना। अब इसको विजुअलाइज कर लो, मेरी हर थॉट, मेरा वर्ड, मेरा बिहेवियर मेरा कर्म है। किसका? मुझ आत्मा का कर्म है। मैंने यहां से कर्म किया, इट इज लॉ ऑफ एनर्जी, कर्मा कॉन्सिक्वेंस कम्स बैक। जन्म पत्री कैसे लिखी जाती है? कि मैंने कर्म किया। अब अगर हम यहां से एक बॉल फेंके और उस दीवार पे हिट होगी, वापस आएगी, तो आप में से जिसको भी कैलकुलेशन करना आता है वो बहुत जल्दी बता देगा, बोलो आपने ऐसे बॉल फेंकी थी, इस डायरेक्शन में इस स्पीड पर फेंकी थी, तो वो इस डायरेक्शन में इस स्पीड पर आएगी। कर सकता है साइंस कैलकुलेट या नहीं कर सकता है? कर सकता है। दैट इज ओनली लॉ ऑफ कर्मा। जब बच्चा पैदा होता है जन्म पत्री क्यों मिल जाती है? क्योंकि बच्चा जो बॉल्स फेंक कर आया है, जन्म पत्री हमें बता देती है वो किस डायरेक्शन में किस टाइम पर वापस आएगी। दैट इज प्री डेस्टिन्ड। तो जब हमारे साथ कुछ जीवन में होता है तो हमें ये नहीं कहना है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। द क्यों इज आंसर्ड। मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरे साथ क्यों हो रहा है? चलो अपने हाथ में एक बॉल पकड़ो, अभी विजुअलाइज अ नाइस बॉल इन योर हैंड, ठीक है? ध्यान से फेंकना, फेंकने के बाद चॉइस नहीं मिलेगी। सारा अटेंशन अपने कर्म पर रखना है। एक बार निकल गया हाथ से, कांट डू एनीथिंग। अब आपके हाथ में ये बॉल है, अब इसको अपने सामने वाली दीवार पे ऐसे फेंको। चॉइस इज योर्स, कैसे फेंकना है, कौन सी स्पीड, कौन सी डायरेक्शन। यूज योर कंप्लीट पावर इन क्रिएटिंग योर कर्मा। फेंक दो अभी सारे। फेंक दिया। अभी देखो हर एक ने अलग अलग स्टाइल से फेंका था। किसी ने ऐसे फेंका, किसी ने ऐसे। दिस इज कर्मा। ज्ञान सेम दे दो सबको। हमेशा हरेक का कर्म अलग अलग होगा बेस्ड ऑन संस्कार। नाउ दैट बॉल हैज गॉन एंड हिट दैट वॉल, एंड वॉट हैज हिट दैट वॉल इज नाउ गोइंग टू कम बैक। नाउ लुक एट इट कमिंग बैक टू यू। लुक एट इट, देखो उसको कि वो आपके पास आ रही है। दिस इज द एनर्जी बॉल, कर्मा बॉल। ये गई, ये वापस आएगी। अब सिर्फ क्या है, कभी कभी बॉल उसी सेकेंड वापस आ जाती है, कभी कभी 10 मिनट बाद आती है, कभी कभी 1 महीने बाद आती है, कभी कभी 1 साल बाद आती है, कभी कभी 100 साल बाद आती है। लेकिन आएगी किसके पास? आएगी किसके पास? अब विजुअलाइज करो, आपने ये बॉल फेंकी और ये वापस आने वाली है 2 घंटे के बाद। नहीं, ये वापस आने वाली है शाम को 6:30 बजे, ठीक है? आपने 10:30 भेजी, ये 6:30 बजे वापस आने वाली है। आप उतनी देर में बाहर गए, कमरे में गए, ड्रेस चेंज की, वापस आ गए शाम को। ड्रेस चेंज हो गई बट वो बॉल आ गई। आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? क्या हुआ, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? ट्रैफिक कंट्रोल। Now look at all the balls that are coming into your life, all situations. ड्रेस चेंज करके आ गए, बॉल वापस आएगी? यस और नो? यस। अब इसको विजुअलाइज करना। मैं आपको याद है ना कौन से डायरेक्शन में फेंकी थी? हर एक को याद है, आपने फेंकी, आप कमरे में गए, आप वापस आए, ड्रेस चेंज हो गई, बॉल वापस आ रही है। आपने फिर फेंका, आप कमरे में गए और आज रात को शरीर चेंज कर लिया, अगले दिन नए शरीर में यहां आ गए, बॉल वापस आ रही है। जैसे ही नए शरीर में चेंज हुए तो हमें सारी पुरानी कौन सी बॉल फेंकी थी भूल जाती है, हमें भूल जाता है कि मैंने पुराना कौन सा कर्म किया था। लेकिन बॉल ने तो वापस आना ही है, उसने थोड़ी देखना है आपने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, आपने ड्रेस चेंज कर दी, कुछ भी नहीं। उसने तो जैसे आपने फेंका था उसका तो काम है वैसे वापस आना है। अब आप इसी हॉल में सारे आके बैठ जाओ लेकिन ये वाला शरीर ड्रेस चेंज हो गया है, यू विल नॉट रिकग्नाइज ईच अदर। क्योंकि हम किस तरह से रिकग्नाइज करते हैं? इन आंखों से रिकग्नाइज करते हैं एक दूसरे को। आंखों से देखने वाली चीज चेंज हो चुकी है। एंड फिर आप देखेंगे इसके पास इतनी अच्छी बॉल कैसे आ रही है, इनके पास इतनी गलत बॉल क्यों आ रही है? ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके पास गलत क्यों आ रहा है? ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, इनके पास राइट क्यों आ रहा है? क्यों हमारा माइंड ये सब क्वेश्चन कर रहा है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। क्या नहीं पता? क्या नहीं पता कि ये कॉस्ट्यूम जो नया है इसके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है ये वही है जिसने कल 10:30 को ऐसे वाली फेंकी थी। एंड दैट इज वाई वी क्वेश्चन सो मेनी सीन्स ऑफ लाइफ, दैट इज वाई वी कंपेयर आर सेल्स विद अदर पीपल। उनके पास तो ये आ रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? भाई मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? आंसर, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? अब तो आंसर दो, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने ऐसी वाली नहीं फेंकी थी, मैंने ऐसी वाली फेंकी थी। इसलिए कंपैरिजन फिनिश्ड, कंपटीशन फिनिश्ड, क्वेश्चनिंग पीपल्स डेस्टिनी फिनिश्ड। किसी को गुड मिल रहा है उसको भी क्वेश्चन नहीं करो, उसके लिए भी ब्लेसिंग्स दो। किसी के जीवन में गुड का ऑपोजिट हो रहा है उसको भी क्वेश्चन नहीं करो, उसके लिए भी ब्लेसिंग्स दो। क्योंकि ब्लेसिंग्स देते ही क्या होगा? जब कोई बॉल वापस आ रही है ना, वो हमारा पास्ट कर्म वापस आ रहा है। लेकिन जैसे ही पास्ट कर्म वापस आता है हम थॉट क्रिएट करेंगे। जैसे आपके लाइफ में कुछ होगा आप थॉट क्रिएट करेंगे। जो हम थॉट क्रिएट करते हैं वो हमारा नया कर्म है जो बाहर जा रहा है। क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ? जो बात आ रही है वो मेरी पहले वाली बॉल है, फेंकी थी वापस आ रही है। आप एक मिनट खड़े हो जाओ। थैंक यू। कल मैंने इनके साथ गलत तरह से बिहेव किया था, आप सबको याद है? याद है मैंने इनके, अब ये आंसर आप देंगे, अभी आई विल नॉट आंसर एनीथिंग, यू विल आंसर एवरीथिंग। मैंने इनके साथ गलत तरह से बिहेव किया क्यों? मैंने इनके साथ गलत तरीके से बिहेव किया क्यों? हम बोलते ना ऐसे, इसको प्रॉब्लम क्या है, मेरे साथ गलत क्यों कर रहा है? मैंने क्यों किया? जो, नाउ दिस इज द सोल, ओके, वी आर फोकसिंग ऑन हिज डेस्टिनी, ओके। जो भी इनके पास ऐसे जा रहा है, मतलब इनकी तरफ जा रहा है, ऑलवेज कीप दिस इन द पिक्चर, जो भी आपके पास आ रहा है वो क्या है? वो बॉल जो आपके पास आ रही है, इनको मेरे से नेगेटिव बॉल क्यों मिल रही है? आंसर दो। इनके पास नेगेटिव बॉल क्यों आ रही है? वेरी गुड। क्योंकि, बोलो बोलो, क्योंकि, क्योंकि मैंने फेंकी थी। बोलिए सारे जरा अच्छे से एक बार, बोलो 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 बोलो। लोग गलत नहीं दिखाई देंगे फिर उसके बाद। हाँ, क्योंकि, क्योंकि मैंने फेंकी थी। तो आधा काम तो वहीं सॉर्ट आउट हो गया, अब हर्ट होने की तो क्वेश्चन ही नहीं है। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन, एंड मोस्ट 99% थिंग्स आर ब्यूटिफुल दैट आर हैपनिंग इन आर लाइफ। एक इतना अच्छा कॉस्ट्यूम मिला हुआ है, इतना अच्छी फैमिली मिली हुई है, आज इतना फॉर्च्यून है, इतना कर्मा है कि अपने आप को 4 दिन की प्रायोरिटी देकर यहाँ निकल के आए हो। बाकियों ने तो कहा हमारे पास टाइम नहीं है, कौन 4 दिन काम वाम छोड़ के जाता है? कर्म है, कर्म के बिना यहाँ आ नहीं सकते ऐसे, प्रायोरिटी थी संस्कार की, तब इसको चूज किया है, फिर यहां से चूज किया, फिर यहां जाके भी अपने कर्मों को बदलेंगे, कितना बड़ा साइकिल होगा ये आगे जाके। फिर अपना कर्म बदलोगे तो दूसरों का भी कर्म बदलोगे, इट इज अ फॉर्च्यून। लेकिन ये फॉर्च्यून कैसे बना? कर्म थे, बिना कर्म के नहीं आएगा। तो जो भी हमारे साथ लाइफ में हो रहा है, बॉल इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, तो मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? आंसर, मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? आंसर, मैंने पीछे कभी कुछ किया था। चलो वो तो खत्म हो गया, आपको याद नहीं है कि आपने मेरे पास कब वो भेजा था, ठीक है? मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं आपको मिलूंगी ना, ऑटोमेटिकली मेरे से आपको वही वाली एनर्जी मिलेगी। अब इनके पास क्या पावर है? यहां से तो मैं भेज रही हूं, लेकिन जैसे ही मैं यहां से भेजती हूं, तो जैसे ही सिचुएशन आई, ये जो फर्स्ट थॉट क्रिएट करेंगे वो इनका क्या होगा? वो इनका क्या होगा? वो आपका होगा प्रेजेंट कर्म। क्यों कल हमने पूरे सेशन ये डिस्कस किया? कोई भी सिचुएशन आ जाए, उसके प्रति आपकी थॉट कैसी होनी चाहिए? चाहे सिचुएशन यहां हो, आपकी थॉट यहां होनी चाहिए। जो सिचुएशन है वो आपके पास्ट कर्म का कॉन्सिक्वेंस है, जो आपका अब रिस्पॉन्स है वो आपका प्रेजेंट कर्म है। प्रेजेंट कर्म इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन द पास्ट कर्म कॉन्सिक्वेंस। द पावर इज इन द नाउ। तो अगर ये कल हर्ट हो जाते, नॉर्मल हर्ट हो जाते, अगर ये नॉर्मल हर्ट हो जाते तो इनकी तरफ से फिर से नया कर्म कैसा होता? कैसा होता? फिर से नेगेटिव। तो नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव फील होकर क्या भेजा? फिर से नेगेटिव। सो एवरी इमोशन दैट वी पुट ऑन द लेफ्ट हैंड यस्टरडे, एवरी इमोशन वी पुट ऑन द सो कॉल्ड नॉर्मल लेफ्ट हैंड यस्टरडे इज अ रॉन्ग कर्मा। वाई? बिकॉज इट्स अ लोअर एनर्जी। सिर्फ अकेले बैठ के उदास होना लोअर एनर्जी। किसी को कुछ बोला नहीं, चुप रहे, हमने सोचा मैंने अच्छा कर्म किया, मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, उदास रहे, कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं? तो इसलिए अगर ये कल हर्ट हो जाते तो इनका प्रेजेंट कर्मा भी कैसे हो जाता? नेगेटिव जा रहा है, प्रेजेंट कर्मा कैसा हो जाता? नेगेटिव। वो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये फिर से नेगेटिव बॉल भेज देते तो फिर क्या होता? पहले तो आ रहा है, अब आप फिर से हर्ट होके आपने नेगेटिव भेजा, अब क्या होगा? अभी नेगेटिव फिर से आएगा क्योंकि बॉल फिर से भेज दिए है, तो अब वापस इस दीवार के। अब अगर अगेन इन्होंने कल क्या किया था? इन्होंने हर्ट होने के बजाय क्या किया था? कल क्या किया था? कल ब्लेसिंग्स भेजी थी। मतलब क्या किया? नेगेटिव कर्मा का रिटर्न आ रहा था, ब्लेसिंग्स भेजी, मतलब प्रेजेंट कर्मा को क्या कर दिया? पॉजिटिव प्योर बना दिया। अब प्रेजेंट कर्मा को पॉजिटिव प्योर बना दिया तो डेस्टिनी में क्या आएगा? तो एवरी मोमेंट पास्ट इज कमिंग टू यू, प्रेजेंट यू आर क्रिएटिंग, फ्यूचर इज गेटिंग डिसाइडेड। तीनों काल साथ साथ हर क्षण चलते हैं। पास्ट आ रहा है, प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है, फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। तो फिर ब्लेसिंग्स देनी चाहिए ना, ब्लेसिंग्स देनी चाहिए ना। हर्ट तो नहीं होंगे, 5 मिनट भी हर्ट हुए तो 5 मिनट रॉन्ग कर्मा चला गया। तो आज से डिसाइड करना है कितनी जल्दी रॉन्ग से राइट पे शिफ्ट होना है। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है उसकी ड्यूरेशन को। पहले 5 घंटे हर्ट होते थे, फिर हम 5 मिनट हर्ट होंगे, फिर हम 5 सेकंड हर्ट होंगे, और फिर हम हर्ट ही नहीं होंगे, हम कहेंगे मेरा कर्मा है, फटाफट ब्लेसिंग भेजते हैं, जल्दी जल्दी ठीक करते हैं इसको, है ना? तो इजी हो जाएगा ना। तो ब्लेसिंग भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए? भेजनी चाहिए, चाहे वो सिचुएशन है। हाँ जी, सॉरी, व्हाट एम आई फेसिंग? I am giving negative, so that is a rebound of his past karmic account, but I still had the power to change it, but I have not changed it. And now when I'm creating that negative, that is also becoming a part of my karmic energy. इसीलिए परमात्मा कहते हैं कर्मों की जो गति है वो बहुत गुह्य है. It's very deep to be able to unravel everybody's karmic account. So what do I need to focus on? He should focus on his right karma. And what should I focus on? तो अब मेरे पास option है. इवन अगर मुझे इनके अंदर कुछ गलत दिखाई दिया, मेरे को थॉट्स भी आएंगे. आपको बहुत बार ये फील होगा कि आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं किसी के लिए, लेकिन आपके पास पावर है कि अब उस नेगेटिव थॉट को भी क्या कर दो जल्दी से. क्योंकि अगर मेरा उनके साथ पास्ट कार्मिक अकाउंट है ना, वो बहुत बड़ी गड़बड़ मेरे साथ करके आए हैं पहले. तो जैसे ही मैं आत्मा इनकी वाइब्रेशन के नजदीक आती हूँ, वेदर इट्स इन अ मैरिज, वेदर इट्स इन अ रिलेशनशिप, वेदर इट्स इन अ प्रोफेशनल लाइफ, उस आत्मा के सामने मेरी एनर्जीज चेंज होने लग जाती है. मैं कहती हूँ पता नहीं मुझे इनसे क्यों प्रॉब्लम होती है, मुझे मेरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं होती है, मेरे को इनसे इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि. लेकिन जैसे ये अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ऐसे मेरे पास भी पावर है कि मेरे माइंड में कुछ आएगा भी, थोड़ा आएगा भी, आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ एंड चेंज. क्योंकि अभी जो मैंने भेजा उसका रिबाउंड तो मेरे पास ही आएगा फिर. So if both souls start taking care of their karma, but till the other person takes care, even if one person takes care, it is working fine. नहीं, बैठिए. भाई साहब ने कहा रेस में पार्ट नहीं लेना चाहिए, तो क्या एम्बिशियस होना गलत है? एम्बिशियस होना मतलब गोल सेट करना कि मुझे उदयपुर जाना है. गोल सेट नहीं करेंगे तो जर्नी पर चलेंगे नहीं. ठीक है, तो आप गोल सेट करेंगे मुझे उदयपुर जाना है. अब आपकी चॉइस है, उदयपुर पहुंचकर आप आधा घंटा रेस्ट करना चाहते हैं या इमीडिएटली अगली बार फिर जयपुर जाना चाहते हैं. यू कीप सेटिंग योर गोल्स नाउ, दैट इज ऑल्सो योर चॉइस कितने ज्यादा गोल्स आपको सेट करने हैं. फिर आप गोल सेट करते हैं मुझे दो घंटे में नहीं, मुझे डेढ़ घंटे में उदयपुर पहुंचना है. दैट इज ऑल्सो योर गोल डिपेंडिंग ऑन वॉट स्पीड यू वॉन्ट टू रन. लेकिन योर गोल, योर ड्राइविंग बेस्ड ऑन योर स्पीड, बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज, नॉट बेस्ड ऑन. सो फिर वो मेरी जर्नी है. फिर मेरी जर्नी में मैं अपनी बेस्ट कैपेसिटी से परफॉर्म करती हूँ. इवन इन एक्चुअल रेस, जो एक्चुअल रेस होती है, स्टार्टिंग लाइन पे हर एक को सिखाया जाता है कि देखना किधर है. आप में से किसी ने रेस में पार्ट लिया कभी? तो देखना किधर होता है? इधर उधर, इधर उधर देखना होता है. किधर देखना होता है? सिर्फ सीधा. एक्चुअल रेस में सीधा देखते हैं और जो रेस ही नहीं है तो इधर उधर देखते रहते हैं. जैसे ही इधर उधर देखा, आपकी परफॉर्मेंस की क्षमता क्या होगी? कम. या तो आप किसी से अपने आप को बहुत सुपीरियर फील करने लगेंगे या आप किसी से अपने आप को कम फील करने लगेंगे. दैट इज ईगो. सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी बोथ इज ईगो. जैसे ही ईगो आया, पावर घटी, क्षमता आपकी कैपेसिटी से घटेगी. भले दुनिया को लग रहा होगा यू आर नंबर वन, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी से कम हैं क्योंकि आपने अपनी पावर को नहीं बढ़ाया. इसीलिए हम देखते हैं जब सेंटर पर भाई बहने आते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं, वो एक्चुअली टाइम निकाल रहे हैं. तो उनकी परफॉर्मेंस घटनी चाहिए ना. टाइम एक एक घंटा रोज निकाल रहे हैं, लेकिन विद इन 3 to 6 months उनका अपना एक्सपीरियंस होता है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ क्या होने लग गई है, बेटर. नो मैजिक. कोई मैजिक नहीं है यहाँ आप आ गए इसलिए आपका अच्छा होने लग गया. नो, यहाँ आप आ गए, आपने अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाना शुरू किया, आपके कर्मा की क्वालिटी क्या होने लग गई, ऊपर उठ गई. आपके कर्मा की क्वालिटी ऊपर उठेगी तो डेस्टिनी की क्वालिटी ऊपर उठेगी उठेगी. तो किसी के शरीर में दर्द है, बीमारी है, ठीक होने लग गया है. किसी के रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक होनी शुरू हो गई है. किसी के बिजनेस की जर्नी ठीक, किसी का बिजनेस ही कहीं का कहीं पहुंच जाता है. नॉट बिकॉज दे केम हियर, बिकॉज दे केम हियर रेज देयर कर्मा. एज अ रिजल्ट डेस्टिनी हैज टू शिफ्ट. तो यहाँ आना स्पिरिचुअल लाइफ लीड करने का मतलब नहीं है कि फिर हमारा एम्बिशन खत्म हो जाएगा. फिर उसका मतलब ये है कि जितना पहले अचीव कर रहे थे उससे ज्यादा करेंगे, लेकिन खुशी और हेल्थ के साथ. खुशी और हेल्थ को गवा के नहीं अचीव करेंगे और प्यारे रिश्ते पहले घर में बनाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड लाइफ. सो व्हेन वी से वर्क लाइफ बैलेंस, कल किसी ने कहा था ना वर्क लाइफ बैलेंस, सो इट्स नॉट वर्क लाइफ बैलेंस, इट इज बैलेंस योर लाइफ एंड देन गो टू वर्क. इट्स व्हेन वी हैव नॉट टेकन केयर ऑफ दिस बैलेंस दैट एवरीथिंग सीम्स वेरी थके हुए लगता है, मुश्किल लगता है. आप सिर्फ जाने के बाद आधा घंटा अपने आप को सुबह दो, आपका ये वर्क लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा. बिकॉज यू विल जस्ट बी एनर्जाइज्ड इन व्हाट यू आर डूइंग. सो देयर इट इज नॉट बैलेंस, इट इज डूइंग एवरीथिंग विद योर द राइट बैलेंस. तो कोई भी सिचुएशन मेरे लाइफ में आ रही है, कॉज इज लो उनका नाम मी. To change it, power is me. Now what should I do then for that situation and person? Bless them. Matlab create the highest karma. Jaise isiliye jaldi se thoughts mein change karna hai. To past wapis aa raha hai, present create ho raha hai, future decide ho raha hai. To jab hum kehte everything is predestined, it is predestined. But predestined by who? Predestined by who? Me. तो अब जो बॉल्स आपके सामने आ रही हैं, गिव इट अ कलर कि वो एक ग्रे बॉल है, ब्लैक बॉल है, ब्लू बॉल है, डार्क कलर दे दो उसको एक. ठीक है, अपनी सिचुएशंस में देख लो कौन सी डार्क कलर बॉल्स आपके पास आ रही हैं. मेजॉरिटी आपके पास बहुत अच्छी वाली आ रही होंगी, लेकिन अच्छी वाली तो हम कहते हैं अच्छी है सब, लेकिन कई बार अगर हम ध्यान नहीं रखते तो आ अच्छी वाली रही है लेकिन अब गलत वाली जा रही है. रिश्ता जुड़ा, बहुत अच्छा रिश्ता जुड़ा, इकट्ठे रह रहे हैं, व्हाइट कलर बॉल्स एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना ध्यान नहीं रखा, भागते गए, रेस में है, घर आते हैं शाम को इरिटेबल होने लग जाते हैं, ब्लैक बॉल जानी शुरू हुई है. सामने वाले ने कहा थोड़ी देर तो बैठ के बात करते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं आया, ब्लैक एनर्जी बॉल जानी शुरू हुई. धीरे 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 शुरू व्हाइट से हुए थे. सो इट इज नॉट कि ब्लैक आती है तो व्हाइट भेजनी है, व्हाइट आती है तो ज्यादा व्हाइट भेजनी है, कि ध्यान रखें वो हमेशा व्हाइट रहे. वो व्हाइट को ग्रांटेड नहीं लेना कि वो हमेशा व्हाइट रहेगी. जो व्हाइट आ रही है दैट इज द पास्ट कार्मिक अकाउंट व्हाइट. प्रेजेंट कर्मा आई स्टिल हैव टू क्रिएट. बॉडी मिली, हेल्दी मिली, पास्ट कार्मिक अकाउंट, हेल्दी बॉडी मिली है. बहुत लोगों का शरीर किसी रोग के साथ स्टार्ट होता है, हमें हेल्दी मिली है, पास्ट कार्मिक अकाउंट. अब अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, प्रेजेंट कर्मा, तो जो वाइट है ना आपकी लाइफ में उस पे फोकस करो और उस पे ध्यान रखो कि आई ऑलवेज कीप इट वाइट. चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो शरीर है, चाहे वो संस्कार है. और अगर कोई डार्क आ रहा है उसको तो हम फटाफट से क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे. और चेंज करके हम अपने जीवन के हर एस्पेक्ट की डेस्टिनी को क्या करेंगे. अब किसी भी एक रिश्ते को ले आओ जिसमें आपको अच्छी एनर्जी नहीं मिल रही है सामने से. सबसे पहली चीज, उनको ब्लेम करना बंद करो कि वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं. क्या मैं इनके साथ गलत कर रही थी? कल आपको लग रहा था ना मैं इनके साथ गलत कर रही थी, अब चेंज हो गया ना नजरिया. That is why people go and get past life regression done. To go and see, सामने वाले ने मेरे साथ क्या किया था. जरूरत नहीं होती है कराने की. प्रकृति का नियम है कि आपको पास्ट याद नहीं रहना चाहिए, तो फिर प्रकृति के साथ खेल नहीं खेलना. It was designed in such a way that I should forget the past. मुझे पास्ट नहीं याद आना चाहिए. It can be very disturbing for people. पर मुझे याद करना ही क्यों था, जस्ट टू सी कि उन्होंने क्या किया था. तो मुझे देखना क्यों है, आई जस्ट नो कि कुछ किया था, फिनिश्ड. क्योंकि मुझे पता भी चल जाए कि उन्होंने क्या किया था तो भी मुझे ठीक तो अभी करना है. और वो ठीक किसको करना है, ठीक किसको करना है, मुझे करना है. तो पास्ट को पता करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि फोकस सारा किस पर है. तो किसी भी रिश्ते में कोई भी कुछ कर रहा है, भले आपको लग रहा है आप राइट हैं, वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग कर रहा है, लेकिन याद रखें कि मैं अभी राइट हूं, वो रॉन्ग है. लेकिन वो जो रॉन्ग कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि मैंने कभी ना कभी कुछ रॉन्ग किया था. तो जो आपके साथ आज रॉन्ग कर रहे हैं, सबसे पहले मन में बोलकर नहीं, मन में सबसे पहले उनको सॉरी बोलो। इसका मतलब है, मैं इनको यहां से क्रिटिसाइज कर रही हूं, जब इनको याद है कि ये पास्ट कर्मा है तो इनको पता है कि इन्होंने मेरे साथ कुछ बहुत गलत किया है। दैट इज व्हाई आई एम स्क्रीमिंग इन पेन नाउ एट हिम। इट इज माय पास्ट वुंड, इट इज माय चोट। तो सबसे पहले मन में सही इनको मुझे सॉरी बोलना है, ताकि इनको मेरे को दी हुई पुरानी चोट को क्या करना है, ठीक करना है। तो पहला संकल्प, इन्हें मुझे सॉरी बोलना है। दूसरा संकल्प, इन्हें मुझे जो आज मैं कर्म कर रही हूं उसके लिए फॉरगिव करना है। तीसरा संकल्प, इन्होंने कहना है पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, आज से न्यू कार्मिक अकाउंट शुरू करते हैं। एंड चौथा संकल्प, इन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स भेजनी है। फोर थॉट्स क्या है? फोर थॉट्स, आई एम सॉरी फॉर द पास्ट जो मुझे याद नहीं है। दूसरा, आई फॉरगिव फॉर व्हाट यू आर डूइंग नाउ। पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर। कोई भी आपके जीवन में कार्मिक अकाउंट चल रहा हो ना, उसके लिए बार बार कहना पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर। ये नहीं बोलना बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, देन व्हाट एम आई डूइंग टू द पास्ट कार्मिक अकाउंट। बार बार मैं ही बीमार होता हूं, बार बार मेरे साथ फेलियर होता है, बार बार, बार बार नहीं होता, बार बार हम उसको कर देते हैं रिपीट करके कि बार बार बोलो हो गया, हॉस्पिटल हुआ है, दिस इज द लास्ट टाइम आई वेंट टू द हॉस्पिटल, आई एम नेवर गोइंग टू गो अगेन, माय पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर। ये फेलियर हो गया, हो गया, दिस इज माय पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, नेवर टू हैपन अगेन। ऐसा नहीं, पिछली बार नहीं हुआ, पता नहीं अब क्या होगा। एवरी थॉट इज अ, इस बार ठीक हो जाए, इस बार ठीक नहीं होगा तो कैसे होगा। हम पहले से ही कौन से संकल्प डाल रहे हैं, इसीलिए वो मॉर्निंग का वन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना हमारी रोज प्रोग्रामिंग कराता है, फिर वो तो हमारा पूरा दिन उस फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाता है। धीरे धीरे फिर हमारे ऊपर हवा आती है, फिर हम सुबह अगले दिन फिर चले जाते हैं। इट टेक्स टाइम। इवन अगर आज जिनको भी आप यहां मिल रहे हैं वो 25 साल से, 30 साल से, 50 साल से कर रहे हैं, लेकिन आज भी इतनी पावर होती है, आज भी अगर मैं एक महीने के लिए भी मैं अपनी मॉर्निंग मेडिटेशन और मैं अपनी मॉर्निंग क्लास बंद कर दूं, मेरी थॉट प्रोसेस चेंज होने शुरू हो जाएगी। इट इज लाइक अ डाइट। आप जीवन भर के लिए चार दिन में खा के नहीं जा सकते हो। आपको कब खाना पड़ेगा, कब खाना पड़ेगा, रोज खाना पड़ेगा। सपोज आपने 50 साल रोज अच्छा खाना खाया, यू आर परफेक्ट हेल्दी, लेकिन उसके बाद आपने सोचा अब तो मैं परफेक्ट हेल्दी हूं, अब मुझे क्या अच्छा खाने की जरूरत है, तो फिर कितने दिन में हेल्थ डाउन जाएगी। दैट इज वाई द सीक्रेट इज कंसिस्टेंसी। डेली इज द सीक्रेट। कोई भी चीज में डेली करेंगे तो फिटनेस है, इसलिए डेली। चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, उनको सामने लाएंगे, आप उन संकल्पों को सुनेंगे और आप उस एक्सरसाइज को करेंगे उनके साथ। अभी कभी भी किसी की भी गलती को पकड़ के नहीं रखना है। कभी नहीं बोलना ओ आई कैन नॉट फॉरगिव, ये बोलना ही रॉन्ग करना है। बोलो आई फॉरगिव, बोलो आई फॉरगिव। 3 वर्ड है आई कैन नॉट फॉरगिव, 2 वर्ड्स है आई फॉरगिव। जस्ट बोलते जाओ आई फॉरगिव, जब याद आए बोलो आई फॉरगिव। करते करते यहाँ का कर्मा चेंज हो जाएगा, कोडिंग चेंज। एंड लोग बोलेंगे यू शुड नॉट फॉरगिव, बोलो आई फॉरगिव, आई फॉरगॉटन। लोग कहते हैं आई कैन फॉरगिव बट आई कैन नॉट फॉरगेट। फॉरगेट मतलब क्या, जो बात हुई थी वो याद है, वो तो याद ही रहेगी। फॉरगेट मतलब दर्द नहीं होता, अब दर्द नहीं होता। वो दर्द तब नहीं होगा जब हम कई बार इस संकल्प को रिपीट करके उस बूंद को क्या कर देंगे, हील। इट वॉज माई पास्ट कार्मिक अकाउंट, इट्स ओवर, आई रिलीज, आई फॉरगिव, आई फॉरगेट, आई लेट गो। बोलो माई पास्ट कार्मिक अकाउंट इज ओवर, आई रिलीज, आई लेट गो, आई फॉरगिव, आई फॉरगेट। 4 लाइनें ऑपोजिट, ये बात मुझे कभी नहीं भूलेगी, मैं इनको नहीं फॉरगिव कर सकती, इन्होंने बात ही मेरे साथ ऐसी की है, मरने तक मुझे ये बात नहीं भूलेगी। ये बोलो या वो बोलो, दोनों तथास्तु ही होने वाला है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, चॉइस हमारी है, हम जो सोचेंगे वो होता जाएगा। सो नेवर लिसन टू व्हाट एवरीबडी थिंक, आई कैन नॉट, बोलो आई कैन एंड आई कैन डू इट। चलिए लेकर आइए उनको सामने। अब जब आप उनको लेकर आएंगे सामने, ब्रिंग द सोल नॉट द बॉडी। आपका कार्मिक अकाउंट उस बॉडी के साथ नहीं है, आपका कार्मिक अकाउंट उस रिश्ते के साथ भी नहीं है, क्योंकि जब आपका कार्मिक अकाउंट उनके साथ बना था वो इस कॉस्ट्यूम में नहीं थे, वो इस रिश्ते में भी नहीं थे। इट्स जस्ट बिटवीन आई द सोल एंड दे द सोल। तो मैं आत्मा बिंदी, ऐसे देखो मैं आत्मा यहां बिंदी और सामने उनको लेकर आओ ऐसे बिंदी। सबसे पहले उनसे हम क्षमा मांगेंगे। मुझे याद नहीं है कि मैंने कब क्या किया था, लेकिन किया था। I am sorry for what I have done in the past. मैं आत्मा आपसे क्षमा मांगती हूं। बोलो उनको, हमें याद नहीं है हम उनके साथ क्या करके आए, क्या उनको चोट दी थी हमने। I am sorry for what I have done in the past. I forgive for what you are doing now. आप जो अभी कर रहे हैं उसके लिए मैं आत्मा आपको क्षमा करती हूँ। I forgive, I forget, बोलते जाइएगा मन में, I forgive, I forget, I release, I let go, past, it's over, full stop. Past karmic account is over. आज से नया कार्मिक अकाउंट। It's my new karmic account with you from today. मेरी तरफ से आपको love, respect and blessings. I radiate to you only love, respect and blessings. I am sorry. I forgive. I release. I forget. I let go. Past is over. Full stop. Past karmic account is over. New karmic account starts from now. I radiate love, respect and blessings. Meri taraf se sirf aur sirf pure energy. Is sankalpon ko agle 15-20 din, ek mahina roz repeat kijiye. Subah kijiye, raat ko kijiye. सिर्फ एक महीना, एक महीना लगेगा नहीं, लेकिन आप एक महीना इसको रोज रिपीट कीजिए एंड आपको कुछ ही दिनों में पहले अपने अंदर चेंज दिखाई देगा कि आपके अंदर का दर्द, आपके अंदर की कड़वाहट वो हटती जाएगी, क्योंकि यू हैव रिप्लेस्ड इट विथ प्योरिटी एंड फिर उसका रिजल्ट आपको उनके अंदर चेंज दिखाई देगा। इट इज सर्टन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। It is tried and tested by millions. It always works because it's just a law of energy. इसी साइलेंस में बैठेंगे आपके बीच अभी नीरजा बहन आएंगी जो खास बॉम्बे से आपको आज मिलने आई है और फिर 12 बजे आपके बीच डॉक्टर मोहित गुप्ता आएंगे ओम शांति शुक्रिया साइलेंस में बैठे अपना चेकिंग करें